पांच उत्सव है, पांच उत्सव है, एक द्रोभाव है, तीन आदरभाव और भगवान कृष्ण का जल विहार और झूलन विहार। आज पूर्णिमा है तो पूर्णिमा को भगवान विशेष रूप से गोपियों के साथ और राधा रानी के साथ लीलाएं करते हैं, तो जल विहार की लीला आप देख रहे हैं यहाँ, इसलिए मैं और ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। जल विहार की लीला आप देख लीजिए और झूलन विहार की लीला आप देख रहे हैं, ये झूलन विहार ठीक है। आज के दिन भगवान का जल विहार और झूलन विहार हुआ है, लेकिन हाँ इस लीला की याद में हम राधा माधव का कीर्तन जरूर करेंगे।
जय राधा माधव जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, श्री प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गाधर सेवा गौरव शिवेन्द्र की जय, श्री श्री राधा श्री ललिता निशाख गोप गोपीनाथ श्याम राधा कुंड गोवर्धन की जय, श्री श्री गौरताय भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, समवेद भक्त की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, इस्कॉन वर्ष मनाचार्य वृंद की जय, श्री कृष्ण झूलन विहार जल विहार महामहोत्सव की जय, लीला परमेश्वरी दास ठाकुर तिरुभाव महामहोत्सव की जय, श्री श्री राधा रमण देव जी आविर्भाव महामहोत्सव की जय, श्री पादमा देवेंद्रपुरी आविर्भाव श्री महामहोत्सव की जय, श्री श्रीनिवासाचार्य आविर्भाव श्री महामहोत्सव की जय, गौर प्रेमानंद ऑल ग्लोरी ऑल ग्लोरी ऑल ग्लोरी श्री गुरु एंड गौरांग। तो अब हम परमेश्वरी दास ठाकुर का तिरुभाव अभी हम ले रहे हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो एक भजन है तिरुभाव का, आप लोग जानते हैं, जय अनिल प्रेम धन।
जय अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर
पूर्ण रूप से समर्पित थे भगवान नित्यानंद के चरण कमलों में, और ये भगवान के नित्य संगी थे। श्री लक्ष्मीनाथ कविराज कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो उनके नाम का स्मरण करेगा तो आसानी से कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेगा। तो आज के दिन बहुत अच्छा मौका है, परमेश्वर दास ठाकुर के नाम का स्मरण करे तो कृष्ण प्रेम बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेगा। परमेश्वर दास ठाकुर या परमेश्वर दास, दोनों नाम है इनके। तो ये जाहनवा माता की सेवा करते थे बहुत विनम्रता पूर्वक, और इन्होंने राधा रानी के विग्रह भी ये लाए थे जिनको जाहनवा माता ने भेजा था वृंदावन में गोविंद जी के लिए। रूप गोस्वामी के जो विग्रह गोविंद जी हैं, तो जाहनवा माता ने उनको भी प्रणाम प्रभु ने बताया था कि वृंदावन में छह गोस्वामियों ने जो मंदिर स्थापित किए थे उनमें केवल कृष्ण के विग्रह थे, राधा रानी के नहीं थे। तो जाहनवा माता ने जो विशेष अपना योगदान दिया, बहुत बड़ा योगदान दिया, वो क्या है कि जितने विग्रह कृष्ण के हैं उन सबके साथ राधा रानी को रखा। तो परमेश्वर दास जो है राधा रानी का विग्रह लाए गोविंद जी के लिए, और इस समय गोविंद जी जयपुर में है, लेकिन इसके पहले वृंदावन थे गोविंद जी। कृष्ण लीला में परमेश्वर दास द्वादश गोपालों में से एक हैं, और ये कौन से गोपाल हैं? अर्जुन नाम के गोपाल हैं। लेकिन ये अर्जुन वो पांच नहीं है, ये अर्जुन सखा है जो द्वाल बाल सखा है, इनके समाधि चौथा समाधि क्षेत्र में है। तो बारह जो गोपाल हैं कृष्ण के साथ जो थे वृंदावन की लीला में, वे भगवान चैतन्य की लीला में क्या बने, इनकी एक सूची है इस पुस्तक में, तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो बहुत अच्छी जानकारी है। जो श्री दामा सखा थे कृष्ण की लीला में, वो चैतन्य महाप्रभु की लीला में कौन है? अभिराम गोपाल। और सुदामा नाम के सखा जो थे, सुदाम या सुदामा जो भी कहें, लेकिन ये सुदामा वो नहीं है, द्वारका वाले सुदामा नहीं है, सुदामा नाम के सखा है कि सुंदरानंद है चैतन्य महाप्रभु के साथ। और महाबल नाम के सखा ये हैं कमलाकर चित्पलाई। तो सुबल नाम के सखा है गौरीदास पंडित, ठीक है। अर्जुन नाम के सखा कौन है? परमेश्वरी दास ठाकुर, आज जिनका तिरुभाव है। और वसुदामा नाम के सखा ये कौन है? धनंजय पंडित, चैतन्य महाप्रभु की लीला में। महाबाहु नाम के सखा है महेश पंडित, और इसको कृष्ण यह पुरुषोत्तम दास। लवंग नाम के सखा है काला कृष्णदास, और दामा नाम के सखा पुरुषोत्तम नागर, और बाहु नाम के सखा है उद्धारण दत्त, और कुसमाखव नाम के सखा है खोल अलेगा श्रीधर। द्वादश गोपाल कृष्ण के साथ जो विशेष लीला करते थे, द्वादश गोपाल हैं। तो परमेश्वर दास ठाकुर का हमने जितना अधिक हो सका चरित्र बता दिया। अब राधारमण देव जी का प्रभाव जिनकी चर्चा करेंगे, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के विग्रह हैं। तो बड़ी प्रसिद्ध घटना है, आप लोग जानते हैं, मैं फिर भी इसको दोहरा रहा हूँ। ये घटना है 1542 की, आज के दिन राधारमण देव जी प्रकट हुए थे, और 12 जो शिला थी गोपाल भट्ट गोस्वामी की, उनमें से एक शिला थी दामोदर शिला। तो दामोदर शिला से ये प्रकट हुए राधारमण जी, जिनका बड़ा सुंदर चित्र भी समाधि पुस्तक में दिया गया है। ये जो राधारमण जी हैं, ये कितने होंगे मेरे ख्याल से चार पांच इंच के होंगे, है ना, चार पांच इंच ऊंचे ये राधारमण जी हैं, और किसी ने बनाए नहीं है, स्वयं प्रकट है। कितने होंगे? तो 10 इंच के जो है ना जो विग्रह है राधारमण जी, तो ये जो है स्वयं प्रकट, इससे जो है बड़ी श्रद्धा पैदा होती है हम लोगों के हृदय में जब ये देखते हैं। ऐसे तो जो बनाए गए हैं पत्थर से या लकड़ी से भगवान के विग्रह हैं, तो कोई भी तर्क कर सकता है कि तो आदमी ने बनाए हैं, है ना। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार से भौतिक बुद्धि से तर्क करता है, उसके पास क्या जवाब है इन चीजों का, जब भगवान जो है ना स्वयं इस प्रकार से प्रकट होते हैं। तो ये राधारमण देव जी जो है, ये ऐसे विग्रह हैं जिनका दर्शन करके कोई व्यक्ति जो भक्ति में बहुत कमजोर है, बड़ी आसानी से भगवान के प्रति श्रद्धा पैदा कर सकता है, है? और देखिए भक्ति की जो है इच्छा के अनुसार भगवान ने कैसे ये अपना रूप प्रकट किया। गोपाल भट्ट गोस्वामी को किसी धनी व्यक्ति ने वस्त्र और आभूषण दिए थे, तो रात भर सोए नहीं, उसकी सेवा तो उन्होंने स्वीकार कर ली बस आभूषण, लेकिन अब ये भगवान की सेवा में कैसे लगाए। रूप गोस्वामी का सिद्धांत युक्त लगाई का कि प्रत्येक चीज भगवान की सेवा में लगाई जाए, तो उनको चिंता हुई कि ये वस्त्राभूषण है ये भगवान की सेवा में कैसे लगाए जाए, क्योंकि शालिग्राम बिस्तला है वो तो कोई आकार नहीं। तो राधर होते रहे। तो आज के दिन जो है मतलब कल नरसिंह चतुर्दशी थी है, तो कल के दिन भगवान जो है खंभे से प्रकट हुए थे, तो रात में जो है भगवान शिला से प्रकट हुए राधा रमण देव जी के रूप में। और जैसे ही सवेरे गोपाल भट्ट गोस्वामी उठे तो उन्होंने देखा कि दामोदर शिला बहुत सुंदर राधा रमण देव जी के रूप में प्रकट हो गए हैं, तो तुरंत उन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी और जितने भी भक्त थे वृंदावन के सबको बुलाया और सब प्रेम से रो रहे थे। आज के दिन जितने भी गोस्वामी लोग थे वो प्रेम से रो रहे थे कि भगवान कितने हैं दयालु हैं, अपने भक्त पर कितनी कृपा करते हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि यथा माम प्रवजन्ते तां सह भजामि हम, तो जो मेरी जिस प्रकार से सेवा करना चाहते हैं मैं उनको उसी प्रकार से अवसर देता हूँ सेवा करने का। तो ये बहुत ही जो है आश्चर्य की घटना है राधा रमण देव जी। और राधा रमण देव जी ऐसे हैं विग्रह जो कि वृंदावन में प्रकट हुए और वृंदावन में ही हैं अभी तक, बाकी जितने विग्रह हैं वो स्थानांतरित हुए मुसलमानों के आक्रमण के कारण। लेकिन एक कारण तो ये भी है कि राधा रमण देव जी नहीं अपने स्थान से हटे, क्योंकि बहुत छोटे थे तो उनको छिपाना बहुत आसान है। राधा रमण देव जी को छिपाना बहुत आसान है, कोई व्यक्ति कहीं भी छिपा सकता है उनको, इसलिए वो जो है वहीं पर है और अभी तक उनकी सेवा हो रही है बड़ी कठोरता से नियमों का पालन करते हुए। श्री श्री राधा रमण देव जी आदर भावी महामहोत्सव की अच्छा माधवेंद्र प्री का आज आदर भाव है। माधवेंद्र प्री के द्वारा जो स्थापित चंदन यात्रा महोत्सव है वो भी चल रहा है जो 21 दिन का है। तो माधवेंद्रपुरी के बारे में इसमें जो लिखा है वो मैं पढ़ रहा हूँ। भगवान चैतन्य प्रकट हुए उससे पहले उन्होंने अपने नित्य संगियों को भेजा, जैसे श्री अद्वैताचार्य, श्री जगन्नाथ मिश्र, सती माता, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, इन सबको पृथ्वी में भेजा भगवान ने। श्री माधवेंद्रपुरी ने दीक्षा प्राप्त की थी श्री लक्ष्मीपति तीर्थ से जो कि मध्वाचार्य संप्रदाय में थे, और उनके बहुत से शिष्य थे जैसे श्री अद्वैताचार्य और श्री ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी के जो मुख्य शिष्य हैं। तो किसी प्रकार से जितने वैष्णव हैं बंगाल के और क्षेत्र मंडल यानी जगन्नाथपुरी के, ये सब श्री माधवेंद्रपुरी से ही संबंधित हैं। भगवान चैतन्य जब आए तो उनकी तो बहुत से उनके जो शिष्य हैं वो महाप्रभु के आंदोलन में शामिल हुए। जब चैतन्य महाप्रभु मिला गए तो माधवेंद्रपुरी के शिष्य जगह जगह से इकट्ठे हुए भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला में। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं माधवेंद्रपुरी का जो शरीर था वो पूर्ण रूप से दिव्य प्रेम से भरा हुआ था और वैसे ही उनके अनुयायी थे, तो उनमें जो है बड़ा ही असामान्य भगवत प्रेम प्रकट हुआ। जैसे ही वो घना जो नीला बादल है वो देखते थे तो वे मूर्छित हो जाते थे, क्यों घना जो बादल है कृष्ण जी आ रहे थे उनको, तो मूर्छित हो जाते थे उसको देख करके। और दिन रात ये माधवेंद्रपुरी नशे में थे, जो कृष्ण प्रेम का जो आसव है मधुर रस है उसको पी करके उसके नशे में ही हमेशा डूब रहते थे। तो भारत भूमि का जो है व्यापक उन्होंने भ्रमण करके वृंदावन और उड़ीसा में उन्होंने अपना जीवन बिताया। तो उन्होंने वृंदावन का जो है जो कार्य था क्या रेस्टोरेशन मतलब अन्वेषण कार्य, तो सबसे पहले माधवेंद्रपुरी ने शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने ही गोपाल पिता को निकाला वृंदावन में जो मिट्टी में दबे थे, जमीन में दबे हुए थे। और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने आगे चल करके फिर इसको और आगे बढ़ाया, लेकिन शुरू किया माधवेन्द्रपुरी ने। तो एक कुंज से दूसरे कुंज में घूमते हुए राधा कृष्ण की जो वृंदावन की मधुर लीलाएं उनका स्मरण करते हुए माधवेन्द्रपुरी भाव में मूर्छित हो जाते हैं। एक स्वप्न में श्री गोपाल ने आदेश दिया माधवेन्द्रपुरी को कि उनका जो विग्रह है, गोपाल विग्रह है, तो उसको जमीन से निकालें और उनको गोवर्धन पर्वत के ऊपर स्थापित करें। माँ देवेंद्रपुरी ने गोपाल विग्रह की जो प्रतिष्ठा है उसका उत्सव मनाया अन्नकूट के साथ। और ये अन्नकूट उत्सव इसको गोवर्धन पूजा भी कहा जाता है। जो वृंदावन के दर्शन है उनके उत्सव में से बड़ा महत्वपूर्ण उत्सव है भारत में और पूरे अब संसार में भी हो गया। जो मूल गोपाल विग्रह हैं उनको श्रीनाथ जी कहा जाता है और अभी उनकी नाथ द्वारा में पूजा होती है राजस्थान में। माधवेन्द्रपुरी ने माधुरी भाव का जो विचारधारा है उसको प्रकट की सबसे पहले मध्वाचार्य संप्रदाय में। माधवेन्द्रपुरी ने प्रेम भक्ति का जो बीज है वो बोया और श्री चैतन्य महाप्रभु उस के जो है बहुत बड़े वृक्ष बने जिन्होंने सिर्फ फल बांटे पूरे संसार को कृष्ण प्रेम के फल बांटे। माधवेन्द्रपुरी ने ही बीज बोया था कृष्ण प्रेम का और चैतन्य महाप्रभु ही उस कृष्ण प्रेम के वृक्ष हैं और उनसे जो ना फल पूरे संसार को जो है वितरित हुए। और उन्होंने ग्रह भाव भी प्रकट किया माधवेन्द्रपुरी ने भगवान से जो है ग्रह का आस्वादन करना, ये माधवेन्द्रपुरी का ही सबसे पहला कार्य है। मध्व संप्रदाय में जो इनकी शाखा है तो ये विशेष रूप से अलग है मध्वाचार्य संप्रदाय से। माधवेन्द्रपुरी की जो शाखा है ये बिल्कुल अलग हो गई। किस कारण से? क्योंकि इनमें जो है भगवत प्रेम का जो भाव है वो विशेष है, इसलिए इसको मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहा जाता है। मध्व संप्रदाय नहीं, मधु गौड़ीय संप्रदाय। माधवेन्द्रपुरी के कारण जो है ये मधु संप्रदाय का एक विशेष विभाजन हुआ है और ये कहलाता है मधु गौड़ीय संप्रदाय। जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु ने ग्रह भाव का तीव्र प्रकाश किया था और ये असीमित रूप से बढ़ा जब भगवान श्लोक सुनते थे श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के, यह कृष्ण करणामृत के श्लोक सुनते थे, यह गीत गोविंद के या पद्यावली के श्लोक सुनते थे। और चंडीदास और विद्यापति की भी जो प्रेम कविताएं हैं उनको सुनते थे। महाप्रभु का ग्रह भाव शुरू हुआ एक श्लोक जो माधवेन्द्रपुरी ने कहा है तो उसे शुरू हुआ माधवेन्द्रपुरी का ग्रह भाव। और चैतन्य महाप्रभु के कौन है माधवेन्द्रपुरी? परम गुरु, गुरु के गुरु परम गुरु हैं। तो अपने परम गुरु के एक श्लोक से चैतन्य महाप्रभु का ग्रह भाव जो है उदित हुआ। और वो श्लोक कैसा है? ऐ दीन दयार्द्र नाथ हे मथुरा नाथ सदा लोक से हृदय सदा लोक का करम दैत धाम की किम करो मैं हम हे दीनों के दिनों पर दया करने वाले हे नाथ हे मथुरा के स्वामी मैं कब आपको पुनः देखूंगी बिना तुम्हें देखे हुए। मेरा हृदय बहुत दुखी है हे मेरे प्रिय, मैं बहुत दुर्बल हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो ये जो श्लोक है चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में चौथे अध्याय का 197वां श्लोक है। श्री कृष्णदास कविराज कहते हैं कि जैसे कि कौस्तुभ मणि है, जितनी प्रकार की मूल्यवान मणियां हैं उनमें सबसे मूल्यवान है कौस्तुभ मणि। तो ये जो श्लोक है ये रस काव्य के जितने श्लोक हैं उनमें से ये सबसे कीमती है। कौन सा श्लोक? जो माधवेन्द्रपुरी ने चर्चा है।
वास्तव में ही जो श्लोक है ये श्रीमती राधा रानी ने स्वयं बनाया। तो ये राधा रानी की जो है का ये क्रंदन है, श्याम सुंदर के प्रति क्रंदन है राधा रानी का, जो कि मथुरा चले गए थे उनको अकेले छोड़ करके वृंदावन में। राधा रानी बहुत दुखी है, तो राधा रानी की कृपा से वही जो श्लोक है ये माधवेंद्र पुरी के द्वारा इस संसार में आया है। तो यहाँ तक इस श्लोक के कुछ शब्द भी बोलते हुए माधवेंद्र पुरी के जाना महाप्रभु के आंखों से अश्रु बहने लगे थे, दिव्य प्रेम के अश्रु बहने लगे थे। कुछ श्लोक कुछ शब्द भी आई दीन चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को पूरा नहीं बोल पाते थे और दिव्य प्रेम के अश्रु बहाते हुए क्या बोलते थे, आई दीन आई दीन आई दीन ऐसे बोलते थे। और इसको इस शब्द को बोलते हुए ही चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो जाते थे। तो कृष्ण का जो ना तीव्र प्रेम अनुभव करते हुए माँ देवेंद्रपुरी निरंतर इस श्लोक का पाठ करते थे जिस समय उन्होंने इस संसार को त्यागा। उस समय कृष्णदास कविराज कहते हैं कि इस श्लोक के साथ माधवेंद्रपुरी भक्तों को शिक्षा देते हैं कि कैसे कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जाए श्री कृष्ण से विरह का तीव्र जो भाव विकसित करते हुए। गौड़ीय वैष्णव जो है ना इस श्लोक को स्वीकार करते हैं कि ये जो ना विरह के भाव का जो ना ये आवश्यक जो है ना श्लोक है। गौड़ीय संप्रदाय शिक्षा देता है कि राधा और कृष्ण की विरह भाव में जो पूजा है तो ये भक्ति योग का सबसे ऊंचा धरातल है। भावना के धरातल पर जो भक्त है वो पूरी तरह से अनुभव करता है कि कृष्ण के बिना ये पूरा जगत क्या है, शून्य है। चैतन्य महाप्रभु का शून्य आइटम जगत सर्वम, कृष्ण के बिना ये पूरा जगत शून्य है। तो शून्यवादी तो भक्त लोग भी शून्यवादी होते हैं, है ना। लेकिन जो अभक्त हैं जो शून्यवादी हैं वो तो कृष्ण को भी शून्य बना देते हैं, है ना। लेकिन भक्त जो है कृष्ण के बिना पूरा जगत शून्य मानते हैं और कृष्ण के साथ ये पूरा जगत शून्य है, इसका बहुत महत्व बढ़ जाता है, है ना। एक के बाद जीरो आप कर दो तो दस और जीरो तो सौ और जीरो, है ना। तो जो पूरा संसार है ये कई शून्य है, बहुत से शून्य है, है कि नहीं। तो प्रभुपाद अमेरिका में गए तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों के पास बहुत से शून्य है, लेकिन कृष्ण को जो है तुम सबसे पहले रख लो तो देखो तुम्हारे पास कितनी बड़ी संख्या हो जाएगी, है कि नहीं। कृष्ण के बिना जो ना पूरे जगत शून्य है, लेकिन कृष्ण जो है शून्य नहीं है। लेकिन जो शून्यवादी है वो क्या कहते हैं, कृष्ण शून्य है कि नहीं। तो ये मूर्खता है। तो कृष्ण के ग्रह में जो है इतना उनको जो है तीव्र होता है भाव होता है कि पूरे जगत को वो शून्य मानते हैं। माधव के बिना एक क्षण भी कैसा लगता है, युग के समान, युग के समान लगता है एक क्षण। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है युगायतम निमेश, एक निमेश का युग के बराबर लगता है। श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा दिव्य उन्माद के महान महाभाव के समुद्र में डूबते रहते थे या तैरते रहते थे और इन भावों में पागल होकर के उन्होंने श्री राधा का जो भ्रमर गीत है जिसमें वो पागलपन जो प्रकट हुआ है उसमें चैतन्य महाप्रभु हमेशा डूबे रहते थे। राधा रानी पागल हो गई तो भ्रमर से बात करते हैं और ये सब चर्चे की कृष्ण ने भेजा है, इसको कृष्ण ने भेजा है, तो भ्रमर से कृष्ण की निंदा करते हैं। फिर कहीं सोचते हैं कि भ्रमर जाके कृष्ण को कह देगा तो फिर जना दुखी हो जाती है, फिर भ्रमर से माफी मांगती है। जिस तरह से भ्रमर गीत में जैसे राधा रानी पागल है ऐसे चैतन्य महाप्रभु हमेशा कृष्ण के ग्रह में पागल रहते थे। तो इस श्लोक में माँ देवेंद्रपुरी प्रकट करते हैं उसी प्रकार के भाव को। गौरी वैष्णव का निष्कर्ष है कि भगवान गौरांग ने
गौड़ी वैष्णव का ये कहना है कि जो चैतन्य महाप्रभु ने दिव्य प्रेम की वर्षा की है इस जगत पर, जो शुरू हुई है किसके द्वारा, माँ देवेंद्रपुरी के द्वारा, और फिर ईश्वरपुरी के माध्यम से आई जिन्होंने भगवान चैतन्य के गुरु का कार्य किया। तो माँ देवेंद्रपुरी की जो समाधि है ये रेमणा में है, उड़ीसा में, जो क्षीर जोड़ा गोपीनाथ के निकट है। तो माँ देवेंद्रपुरी की बड़ी जो है ना सुंदर लीलाएं हैं क्षीर जोड़ा गोपीनाथ के साथ में। तो आप लोग जानते हैं कि माँ देवेंद्रपुरी के कारण ही गोपीनाथ ने क्षीर जो है अमृत, वो कौन सा है, अमृत पीनी नाम की जो खीर है उसका पात्र पुराया है, उसका वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो माँ देवेंद्रपुरी को जो है जब गोपाल विग्रह मिल गए और गोपाल विग्रह की स्थापना उन्होंने गोवर्धन के ऊपर कर दी। आप यहाँ से देख सकते हैं गोवर्धन के ऊपर जो मंदिर बना हुआ है, तो ये माँ देवेंद्रपुरी ने यहीं पर ही गोपाल विग्रह की स्थापना की थी। और फिर गोपीनाथ जी, गोपाल जी ने सपना दिया माँ देवेंद्रपुरी को कि मेरा ताप दूर नहीं हुआ है, इसके लिए मुझे कौन सा चंदन चाहिए, मलाई चंदन चाहिए। तो मलाई चंदन जो है जो विशेष रूप से शीतल होता है, उसको लेने के लिए माधवीपुरी वृंदावन से पैदल चले जगन्नाथपुरी के लिए। रास्ते में रेमणा का मंदिर पड़ा, रेमणा में गोपीनाथ जी के नाम से भगवान प्रसिद्ध हैं और उनको जो भोग अर्पित होता है अमृत के लिए, अमृत के लिए अमृत के लिए नाम का जो भोग है हम विशेष खीर वो बहुत प्रसिद्ध है। तो माँ देवेंद्रपुरी की अयाचक वृत्ति थी, परमहंस सन्यासी थे, अयाचक वृत्ति, बिना मांगे कुछ मिल जाए तो वो ग्रहण करते थे। तो वो मांग सकते नहीं थे, उनके अंदर इच्छा हुई कि अगर ये जो खीर है अगर मुझे मिलती हमें चखता तो ऐसी खीर गोपाल जी को भी भोग लगाता है ना। तो इन वास्तव में भगवान की इच्छा थी, भगवान की सेवा की इच्छा थी, ये अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं थी माँ देवेंद्रपुरी, लेकिन इसको भी उन्होंने अपराध माना कि मैंने ऐसी इच्छा क्यों की। या ऐसा भी कहा जाता है कि वो भोग नहीं लगा था उस समय उन्होंने खाने की इच्छा की, तो इस कारण से उन्होंने अपराध माना। जो भी हो, तो माँ देवेंद्रपुरी किसी भी चीज को खाने की इच्छा कभी करते नहीं थे, ना मांगते थे ना इच्छा करते थे मांगने की, इतने जो ना विरक्त सन्यासी थे, इतने ऊंचे आदर पर थे। तो इन्होंने इसको अपराध मान लिया कि मैंने मन में भी जो सोचा है खाने की इच्छा की है, ये मेरा अपराध हो गया। इसलिए गोपीनाथ जी के मंदिर को छोड़ करके, वो तो समय शाम का समय था, तो वे जो है वो बाजार बंद था उस समय, तो किसी दुकान के बाहर जाना बैठ कर दिया, मैं जाप करने लगे। और यहाँ गोपीनाथ जी को भोग लगा, गोपीनाथ जी को भोग लगा, और फिर पुजारी जी ने गोपीनाथ जी को शयन कराया। और जब सो गए पुजारी, तब गोपीनाथ जी ने स्वप्न दिया, उठ पुजारी, तो उसको पता नहीं मैंने चोरी की है, जो खीर के 12 पात्र थे उनमें से उन्हें 11 ही पात्र खाए हैं, और एक पात्र मैंने अपने वस्त्रों के पीछे छपा करके रखा हुआ है। मेरे बहुत ही अनन्य भक्त माधवेंद्रपुरी नाम के एक सन्यासी हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनका पता लगा, उस नाम से एक सन्यासी आए हुए हैं यहाँ पर, और ये जो खीर का पात्र है उनको दे। अब देखिए माधवेंद्रपुरी नाम कोई नहीं जानता था रेमणा में, ये बिल्कुल नए व्यक्ति थे, कोई किसी को भी परिचय नहीं था माँ देवेंद्रपुरी का। लेकिन वो पुजारी बड़ा चकित हुआ, माँ देवेंद्रपुरी नाम भी बताया और गोपीनाथ जी ने ये भी बताया कि एक पात्र मैंने वस्त्रों के पीछे छिपा के रखा है। अब ये सपना कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई ऐसे सपना दिखाई देते हैं, ऐसे सपना कई लोग देखते रहते हैं भाई, जैसे मंगल आरती देखी है तो कभी सपने में मंगल आरती देखी है, जिस तरह से तो सपने कई लोग देखते रहते हैं, लेकिन ये तो ऐसा सपना है कि कोई जानता नहीं है, और ऐसी बात अब जो है ना उसने सोचा कि मैं देखूं क्या सचमुच ऐसा है। तो उसने देखे कि ये जितने पात्र खाए थे वो कितने हैं, तो गिने तो 11 ही पात्र थे। और गोपीनाथ जी कहते हैं कि मैंने अपनी माया से तुमको ऐसा भ्रमित कर दिया था कि तुमने 11 को 12 ही समझा,
तो फिर बड़ा चकित हुआ, फिर अंदर जाकर के उसने देखा तो वो छिपा हुआ था वास्तव में एक साथ वस्त्रों के बीच में। फिर वो लेकर के वो जो है मंदिर के बाहर गया और उस समय अंधेरा था। यही दिन थे समझ लो, ये दिन मतलब कुछ दिन पहले, ठीक है ना, कुछ दिन पहले। तो वो जो है चिल्लाता है कि माधवेन्द्रपुरी नाम के कौन से महाभाग्यशाली भक्त हैं जिनके लिए गोपीनाथ जी ने खीर की चोरी की है। माधवेन्द्रपुरी के समान कोई इन लोगों में भाग्यशाली नहीं है जिनके लिए गोपीनाथ जी ने खीर चुराई है। माधवेन्द्रपुरी नाम के कौन से भाग्यशाली भक्त हैं, वो चिल्ला रहा है ना, रात के अंधेरे में चिल्ला रहा है। और माधवेन्द्रपुरी सुनते हैं अपना नाम तो वो जो है अपना परिचय देते हैं और वो जो है माधवेन्द्रपुरी को वो खीर का पात्र देता है पुजारी। माधवेन्द्रपुरी जब ले रहे हैं खीर का पात्र तो उनके आंखों से आंसू बहते हैं और भिखारी की तरह उस खीर के पात्र को लेते हैं। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भक्तों को सीखना चाहिए प्रसाद जो है ना ग्रहण करना चाहिए भिखारी की तरह। जैसे भिखारी को कुछ भिक्षा मिलती है तो बड़े सावधानी से और बड़ा महत्वपूर्ण समझ करके वो लेता है और फिर उसका एक एक कण खाता है ना। माधवेन्द्रपुरी है ना आंखों से आंसू भी बहाते जाते थे और वो खीर ही खाते जाते थे। और देखो कितना सम्मान किया कि भगवान ने स्वयं जो है ना अपने हाथों से चोरी की है तो ये मिट्टी का जो पात्र है वो भी फेंका नहीं माधवेन्द्रपुरी ने और उसके भी कई टुकड़े करके अपने वस्त्र में बांध लिए और एक टुकड़ा रोज खाते थे। तो ये माधवेन्द्रपुरी की भक्ति है। और फिर माधवेन्द्रपुरी जब जगन्नाथपुरी में गए रात और आकर वहीं चले गए ये डर के इस बात से डर के कि उनकी प्रसिद्धि बहुत फैल जाएगी और बहुत लोग उनका दर्शन करेंगे और बहुत जय जयकारा करेंगे माधवेन्द्रपुरी का। तो इसलिए वो छिप करके चले गए रातों रातों ही जगन्नाथ को छोड़ करके जगन्नाथपुरी चले गए। लेकिन उनकी प्रसिद्धि जगन्नाथपुरी में पहुंच चुकी थी पहले ही। जगन्नाथपुरी में जब पता चला कि माधवेन्द्रपुरी आए हैं तो वहां के जो पुजारी उन्होंने बहुत स्वागत किया माधवेन्द्रपुरी का। और फिर चंदन कितना चंदन लाए, एक मिनट चंदन लाए है ना, एक मिनट चंदन लेके आए। और फिर गोवर्धन जाना था लेकिन रास्ते में रेमुणा का मंदिर पड़ा तो वहां फिर रुके। और इस रात में गोपाल जी ने फिर सपना दिया माधवेन्द्रपुरी को। माधवेन्द्रपुरी को ये कहा कि अब जो है आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, ये चंदन लेकर के तो चंदन की मात्रा बहुत ज्यादा थी, एक मिनट मतलब 37 किलो। पिछली बार हमने चर्चा की थी 37 किलो का चंदन था और रास्ते में सरकारी अधिकारी मिलते और फिर जो मुसलमान शासक रास्ते में मिलते वो बहुत तंग करते हैं। तो वो जो है भारतीय राजाओं के जो अधिकार पत्र हैं उनको भी नहीं मानते तो काफी दिक्कत होती है। इसलिए गोपाल जी ने फिर आदेश दिया कि चंदन गोपीनाथ जी को अर्पित करो है ना। तो रेमुणा में गोपीनाथ जी को 21 दिन तक वो चंदन अर्पित किया गया। श्री बाल माधवेन्द्रपुरी आविर्भाव श्री महामहोत्सव की। अच्छा अब श्रीनिवास आचार्य, श्रीनिवास आचार्य का आविर्भाव दिवस है तो उनके बारे में मैं पढ़ रहा हूँ इस पुस्तक से। भगवान गौरांग का संन्यास उत्सव देख करके कठवा में किसने देखा था, चैतन्य दास ने, और उनकी गर्भवती पत्नी थी। तो ये जो है भगवान चैतन्य के पास आए जगन्नाथपुरी में। तो भगवान चैतन्य ने कहा, चैतन्य दास ने कहा कि बड़ी जल्दी तुम्हारी पत्नी एक पुत्र को जन्म देगी जिसका नाम होगा श्रीनिवास और श्रीनिवास के द्वारा जितने भक्ति शास्त्र हैं रूप गोस्वामी के सनातन गोस्वामी के ये वितरित होंगे। चैतन्य महापुरुष भविष्यवाणी की तो श्रीनिवास आचार्य का जन्म हुआ था जब और वो बड़े हुए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को दर्शन नहीं किया। श्रीनिवास आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को दर्शन नहीं किया कभी। लेकिन जितने भी भक्ति शास्त्र हैं श्रीनिवास आचार्य के द्वारा ही वितरित हुए। तो जब इनके पिता ने संसार छोड़ दिया तो श्रीनिवास भगवान गौराम के द्वारा जो शेष संगीत है उनके साथ कटवा में भ्रमण किया, उन्होंने नवद्वीप में भ्रमण किया, जगन्नाथ में भ्रमण किया। चैतन्य महाप्रभु के संगी इतने दयालु थे कि चैतन्य महाप्रभु तो नित्य लीला में अपने जा चुके थे, तो श्रीनिवास पर बहुत कृपा करी और कटवा में नवद्वीप में जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु लीला स्थल का दर्शन कराया और उन्होंने श्रीनिवास को आशीर्वाद दिया और बड़ी अद्भुत शिक्षाएं प्रदान की आध्यात्मिक उन्नति के लिए। और गौरांग प्रेम में इनका जाना कितना ज्यादा देवलता देख करके वो जानते थे कि गौर शक्ति की ये मूर्ति है, गौरांग महाप्रभु की ये जाना मूर्तिमान शक्ति है। कौन? श्रीनिवास आचार्य। ये वृंदावन आए और फिर 12 वनों में भ्रमण किया और दीक्षा प्राप्त की जिससे गोपाल भट्ट गोस्वामी थे। श्री जीव गोस्वामी ने इनको पूर्ण रूप से गौड़ी वैष्णव की सिद्धांत समझाए और इनका जो है बहुत अध्ययन देख करके, विशेष अध्ययन देख करके जीव गोस्वामी ने इनको आचार्य को उपाधि प्रदान की, श्रीनिवास आचार्य। जीव गोस्वामी के आदेश को स्वीकार करके श्रीनिवास अपने दो मित्रों के साथ कौन श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम दास ठाकुर के साथ जो दिव्य पुस्तक वितरण का जो दल है वो उन्होंने बनाया, ब्रजवासी संकीर्तन दल की जय। ये ब्रजवासी संकीर्तन दल सबसे पहला बना। तो इन्होंने गोस्वामियों के जो भक्ति ग्रंथ थे उनको बैलगाड़ी में रखा और वृंदावन से चले कहाँ? बंगाल और उड़ीसा में। तो उसमें पुस्तक वितरण का तरीका बहुत ही कष्ट साध था क्योंकि छपाई नहीं होती थी, तो एक पुस्तक से दूसरे पुस्तक बनाने के लिए हाथ से लिखना पड़ता था, पूरी पुस्तक हाथ से लिखनी पड़ती थी, है ना। तो गोस्वामियों के ग्रंथों को जो है उन्होंने बंगाल और उड़ीसा में कैसे फैलाया, किस प्रकार से फैलाया। अब सोचिए कि वो पुस्तकें जो हस्तलिखित पुस्तकें थी उनका कितना महत्व था। श्रीनिवास आचार्य ने बहुत से शिष्यों को दीक्षा दी जैसे रामचंद्र कविराज और भी दूसरे हैं और भक्ति के गीत भी लिखे। आज श्रीनिवास आचार्य का ही एक गीत है जो हमने गाया है, जय अनिल प्रेम धन। गोस्वामी अष्टकम भी श्रीनिवास आचार्य ने लिखा है जो कि मंगल आरती के बाद हम लोग गाते थे, काफी समय तक गाते रहे। वंदे रूप सनातन रघुयो श्री जीव गोपालको सर्गोस्वामी अष्टकम। और फिर विशेष रूप से कीर्तन की विधि काफी उन्होंने प्रचलन किया। जब कीर्तन का ये नेतृत्व करते थे तो कभी कभी इनकी वाणी गदगद हो जाती थी और फिर वो कीर्तन नहीं कर पाते थे श्रीनिवास आचार्य। और उनके प्रचार के द्वारा जो बहुत से बाहरी जो कार्यकलाप थे और लेखन के भी बहुत से जो कार्य थे उनके अलावा श्रीनिवास आचार्य ने रागानुग भजन का तीव्र अभ्यास किया। रागानुग भजन तो एक तो क्या होता है, साधन भजन होता है वैदी भक्ति और दूसरी रागानुग भक्ति। तो रागानुग भक्ति की तीव्र उन्होंने अभ्यास किया। रागानुग भजन में जो राधा और कृष्ण की आंतरिक पूजा होती है, निरंतर आंतरिक पूजा होती है और ये आधारित है भाव पर आधारित है। जो श्री वृंदावन धाम के जो निवासी हैं उनके भाव पर आधारित है, जैसे गोपियां हैं तो इस भाव में जो है ना राधा कृष्ण की जो पूजा होती है तो वो मानसिक सेवा जिस समय वो कर रहे थे राधा कृष्ण की तो उससे जो है जब वो बाहरी क्षेत्र में आते थे तो बड़े अद्भुत घटनाएं घटती हैं। जब वो भाव समाधि में राधा कृष्ण की पूजा करते थे और फिर जब वो बाहरी क्षेत्र में आते थे तो बड़ी अद्भुत घटनाएं घटती थी। क्या होता था? वो ध्यान की अवस्था में वो जिन जिन चीजों का प्रयोग करते थे आध्यात्मिक जगत की चीजें, तो वो जब बाहरी क्षेत्र में आते थे तो उनके पास वो सामान जो है ना वो इतना प्रकट हो जाते थे। तो एक बार श्रीनिवास जो है ना बैठे हुए भगवान गौरांग को उन्होंने रत्नों के सिंहासन पर बिठाया। देखिए अपने माम की सेवा में वो क्या कर रहे हैं, भगवान गौरांग को रत्नों के सिंहासन पर उन्होंने बिठाया। अच्छा आप कुछ नहीं देख सकते, वो तो अपने ध्यान में ऐसा कर रहे हैं। अच्छा फिर उन्होंने भगवान की पूजा की और सोने का जो है वो चमर था, चमर जो है सोने की मूठ वाला चमर था, और पांच प्रकार के फूलों की माला, उसको क्या कहते हैं, वैजयंती माला बोलते हैं, पांच प्रकार के फूलों की माला वो पहनाई। तो उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के भगवान गौरांग ने श्रीनिवास के गले में वो माला डाल दी। अब देख रहे हो ये मां की सेवा है और किसी को पता नहीं चलता है कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने अपने मन के अंदर ही रत्नों के सिंहासन पर चैतन्य महाप्रभु को बिठाया और फिर जो है ना उनको चमर दुलाया और उनको पांच फूलों की माला पहनाई और भगवान चैतन्य प्रसन्न होकर के वो माला इनके गले में डाल देती है और उससे इनका जो है ना ध्यान भंग हो गया। हर्ष के मारे अचानक चैतन्य महाप्रभु ने जब माला पहनाई तो हर्ष के मारे इनका ध्यान भंग हो गया। तो चकित होकर के श्रीनिवास ने क्या देखा कि वो उनके गले में लटक रही है माला। जब वो बाहरी क्षेत्र में आए तो वो जो है ना तीव्र स्वतंत्र वाली जो माला है वो उनके गले में लटक रही थी। सोचिए कितना चमत्कार है। अब ये जो है ये जो फूलों की माला थी ये आध्यात्मिक जगत की थी, ये उनके गले में आ गई। दूसरी ये घटना है अपने सिद्ध स्वरूप में श्रीनिवास राधा रानी की जो है ना सेवा कर रहे हैं और इनका सिद्ध स्वरूप क्या है, मणिमंजरी। श्रीनिवास आचार्य मणिमंजरी है कृष्ण की लीला में, तो मणिमंजरी के रूप में ये राधा रानी को देख रही हैं और श्री कृष्ण और गोपियों को, और वो होली लीला चल रही है जिसमें कि गुलाल और रंग जो है ना फेंकती हैं गोपियां कृष्ण के ऊपर। तो गोपियों ने मणिमंजरी से बोला कि राधिका को जो है ज्यादा से ज्यादा रंग देते जाओ क्योंकि श्याम सुंदर के साथ में युद्ध चल रहा है तो राधा रानी हारे नहीं तो उनको रंग की कमी ना पड़े। राधा रानी श्याम सुंदर के ऊपर रंग फेंक रही है तो उस में जो है ना गोपियां और कृष्ण जो है ना जब खेल रहे हैं तो पृथ्वी हिल रही है उनका जो है उस लीला में। और श्रीनिवास आचार्य का जो है जब ध्यान टूटा अचानक तो उनका पूरा शरीर अंगूठे से लेकर के सिर तक बहुत सुगंधित जो रंगीन गुलाल थी उससे रंगीन हो गया था पूरा शरीर। तो श्रीनिवास आचार्य की समाधि धीर समीर घाट में अभी विद्यमान है। तो ये श्रीनिवास आचार्य के जो है बड़े अद्भुत जो है ना चमत्कार है। आप किसी को कुछ कहना है इसके बारे में? धन्यवाद। मोहन रूपा प्रभु बता रहे हैं कि राधा रमन जी जो स्वयं प्रकट हुए हैं विग्रह जो तीन मुख्य विग्रह हैं गौड़ी वैष्णव होंगे जो संबंध अभिधेय और प्रयोजन को प्रस्तुत करते हैं। तो संबंध विग्रह मदन मोहन जी हैं तो मदन मोहन जी का मुंह है ना, अच्छा मदन मोहन जी के चरण, मदन मोहन जी के चरण मतलब बिल्कुल कृष्ण के अस्थि चरण है ना, तो वो राधा रमन जी के चरण भी रहते हैं। और फिर अभिधेय विग्रह गोविंद जी हैं तो गोविंद जी की कमर मुखारविंद, गोविंद जी का मुखारविंद मतलब बिल्कुल कृष्ण का असली मुखारविंद है तो वो राधा रमन जी का है मुख। और फिर अभिधेय प्रयोजन, प्रयोजन विग्रह गोपीनाथ जी हैं, गोपीनाथ जी का जो वक्षस्थल है वो मतलब कृष्ण का बिल्कुल असली वक्षस्थल जैसा है तो वो राधा रमन जी का वक्षस्थल है। राधा रमन जी की कमर जो है ना पतली है, सिंह के समान पतली कमर है राधा रमन जी की। और कोई चर्चा? धन्यवाद।
श्रीनिवासाचार्य नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित, ये तीनों जो है बैलगाड़ी में गोस्वामियों के ग्रंथों को रख करके जब चले गौड़ देश की तरफ, तो रास्ते में गीर विष्णुपुर नाम का स्थान पड़ा। तो वहां का जो राजा था गीर हमीर, तो वो दिन में तो शास्त्रों को सुनता था पंडितों के मुख से, और रात में वो चोरों के साथ मिला हुआ था। तो जो चोर थे, डाकू लोग थे, डकैत लोग, तो उनसे वो अपना हिस्सा लेता था, चोरी डाका था। तो उसको किसी जोशी ने बताया, किसी जोशी ने बताया कि ये जो तीन व्यक्ति हैं इनके साथ में दस सिपाही भी थे सुरक्षा के लिए। तो ये तीन व्यक्ति हैं, इनकी गाड़ी में बहुत बड़ा जो ना रत्नों का भंडार है इनकी बैलगाड़ी में। तो वीर हमीर के जो ना 100 से ज्यादा जो सिपाही थे, डाकुओं का दल था, तो वो आकर के जो ना लूट लेते हैं। अब उनके जो 10 सिपाही थे वो क्या कर रहे हैं, तो लूट करके ले गए। तो फिर ये बड़े दुखी हुए। तो श्रीनिवासाचार्य ने कहा श्यामानंद को, अनुरोध कर सकते हो कि आप लोग जाओ गौड़ देश में और प्रचार करो, लेकिन इन ग्रंथों के बिना मैं तो आप लोग कहीं नहीं जा सकता। मैं तो यहीं पर रहूंगा, जब तक ग्रंथ नहीं मिल जाते हैं तब तक मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ। तो श्रीनिवासाचार्य वहीं पर ही पड़े रहते थे, सड़कों में पड़े रहते थे। कई दिनों से उन्होंने स्नान भी नहीं किया, कपड़े से बहुत मैले हो गए, एकदम बिल्कुल विकसित हो गए, दिमाग बिल्कुल सोचो कि पागल जैसा कोई व्यक्ति हो जाएगा। कि 6 गोस्वामियों के ग्रंथ सोचिए हाथ से लिखे हुए और केवल एक ही प्रति है, पांडुलिपि बोलते हैं, मूल प्रति है 6 गोस्वामियों के, जो जीवन का जो है ना पूरा का जो है समझो कि परिश्रम जो है 6 गोस्वामियों के ग्रंथ। और वो जो है कोई ऐसे ले जाए, सोचिए श्रीनिवास को कैसा लगता था, बिल्कुल पागल जैसे विकसित जैसे दिखाई पड़ते थे। तो ऐसी हालत में वो जरा घूमते रहते हैं और जो है ना कुछ खाने को मिल जाए तो खाते, नहीं तो नहीं खाते, बहुत चिंतित। तो एक दिन ऐसे घूमते घूमते वो राजा वीर हमीर की सभा में पहुंचे और वहां पर जो है भागवत का पाठ चल रहा था। तो जो पंडित थे भागवत सुना रहे थे, तो उनकी जो व्याख्या थी वो सही नहीं थी। तो श्रीनिवासाचार्य उनको तो कोई पहचानता नहीं था, और ये सभा में जब बैठ गए तो मतलब लोगों के बीच में बहुत ही ऐसे गंदे मालूम पड़ रहे थे, जिस पर कि कोई व्यक्ति ध्यान ही नहीं देगा कि भाई इस व्यक्ति का क्या महत्व है, कोई महत्व नहीं समझ सकता श्रीनिवासाचार्य का। और इन्होंने टोक दिया कि इस श्लोक का ऐसा अर्थ नहीं है। तो वो जो सभा के लोग थे तो बड़े गुस्सा हुए कि ये कहाँ से आदमी आ गया, इसको क्या अधिकार है बोलने का, टोकने का। राजा वीर हमीर जो है विद्वानों का सम्मान करता था, तो उसने विचार करके कि हो सकता है कि ये व्यक्ति विद्वान हो, उसने प्रोत्साहन किया इनको कि आप बताओ इसका क्या अर्थ है। और जब इन्होंने बताना शुरू किया तो धारा प्रवाह इन्होंने व्याख्या शुरू कर दी भागवत श्लोक की। तब वीर हमीर बहुत प्रभावित हुआ इनसे, और फिर इनको अपने महल में लाया, फिर इनको अपना गुरु स्वीकार किया, इनसे परिचय पूछा, इन्होंने अपना परिचय बताया। तब वीर हमीर ने जो है इनसे क्षमा याचना की और बताया कि वो सब ग्रंथ मेरे पास हैं, सुरक्षित हैं। किस तरह से फिर जो है इनका एक अलग से महल बनवा दिया राजा वीर हमीर ने। और फिर जब भी श्रीनिवासाचार्य आते थे उस महल में ठहरते थे, और इनके ही मार्गदर्शन में वीर हमीर ने अपने पूरे नगर को वैष्णव बना दिया। तो दीर्घ विष्णुपुर में जो है फिर भक्ति जो गौड़ीय संप्रदाय का जो है ना बहुत प्रचार हुआ, बहुत लोग भक्त बने श्रीनिवासाचार्य की कृपा से। तो जीव गोस्वामी को समाचार मिला था कि गोस्वामियों के ग्रंथ में चोरी हो गए, तो जीव गोस्वामी ने चिंता नहीं की। वो समझ गए कि कृष्ण ने कुछ विशेष योजना है और ये ग्रंथ जहां भी होंगे वहां अपना विस्फोट करेंगे, टाइम बम जैसे होता है। तो ये ग्रंथ जो छिपने वाले नहीं है, तो ये जो है कृष्ण जी विशेष योजना थी, और श्रीनिवासाचार्य के माध्यम से और इन ग्रंथों के माध्यम से गौड़ी भक्ति का बहुत प्रचार हुआ। धन्यवाद। तो मोहन बाबा एक और भी विस्तृत घटना की याद दिला रहे हैं। माँ देवेंद्रपुरी जब इस का पाठ करते हुए अपने शरीर को छोड़ रहे थे कृष्ण के विरह में, तो रामचंद्रपुरी जो उनके शिष्य थे तो उन्होंने माँ देवेंद्रपुरी को शिक्षा देना शुरू किया और क्या कहने लगे कि आपको तो शोक करने की जरूरत नहीं है, ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा नाथ होते जन काम सकी, तो भगवत गीता के धरातल पर जो है वो शिक्षा देने लगे अपने गुरु को। और उनको ने पता नहीं था कि उनके गुरु महाराज कितने ऊंचे धरातल पर हैं जो कृष्ण के विरह का अनुभव कर रहे हैं। भगवत गीता में जो भगवान कहते हैं कि वो शोक नहीं करता है, वो संसार की चीजों के लिए शोक नहीं करता कि संसार की चीजें जो ना अगर खो गई नष्ट हो गई उनके लिए शोक नहीं करता है, इस कृष्ण के लिए वो शोक कर रहे हैं और उनको भी वो शिक्षा देने लगेगी कि आप कृष्ण के लिए क्यों शोक कर रहे हैं। और फिर उन्होंने यही कह दिया कि आपका हृदय मथुरा है और ये ब्रह्म ही जो है मथुरा में निवास कर रहा है, आप किसके लिए शोक कर रहे हैं। तो माधवेंद्रपुरी ने फिर रामचंद्रपुरी को क्या कहा कि दूर हो जाओ मेरी आंखों से, अगर तुम्हारा मुंह देख करके अगर मैं शरीर छोड़ूंगा तो मैं नरक की प्राप्ति करूंगा। वास्तव में कैवल्य मोक्ष नरक के समान ही कहा जाता है, वैष्णव लोग नरक के समान ही मानते हैं। तो जो मायावादी सिद्धांत है तो वो जो है नरक के समान है भक्तों के लिए। तो माधवपुर ने जो कहा ये सही कहा कि तुम्हारा मुंह देख करके अगर मैं शरीर कर जाऊंगा तो मैं नरक में जाऊंगा, कैवल्य मोक्ष नरक के समान है। और ईश्वरपुरी जो उनके दूसरे सिद्ध थे उन्होंने माधवीपुरी की भावनाओं को समझा और उनकी भावनाओं के अनुसार वो जो है पाठ सुनाते थे, कृष्ण की लीलाएं सुनाते थे माधवीपुरी को और उनके विरह को कम करते थे और उनका मलमूत्र भी साफ करते थे। तो माधवीपुरी ने ईश्वरपुरी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हें भी ऐसा ही शिष्य प्राप्त होगा, तुम्हारे ही समान तुम्हें शिष्य प्राप्त होगा। तो उनके शिष्य जो है ना चैतन्य महाप्रभु हुए, तो माधवपुरी का जो है ना ये आशीर्वाद था ईश्वरपुरी के ऊपर। माधवेंद्रपुरी जो है गोलोकधाम में एक कल्प वृक्ष है, ये जो है ना सूचना आप लोगों को पता होना चाहिए। कल्प वृक्ष माधवेंद्रपुरी को गोपाल जी ने कितने बार सपन दिया, तीन बार सपन दिया, ठीक है। तो पहली बार किस समय गोविंद कुंड में जब वो थे और एक बालक दूध का पात्र लाया था और फिर बोला कि मैं ले जाऊंगा, वो बालक नहीं वापस आया, तो वे रात भर भजन कर रहे थे और सवेरे का टाइम था, वो इतने शांत काल तो थोड़ा सा उनको झपकी आई, बैठे बैठे आँख जो है ना बंद हुई और उसी समय उनको सपन हुआ और वो गोपाल जो बालक था वो बोला कि मैं इसी क्षेत्र का जो है देवता हूँ और मेरी स्थापना की थी बैजनाथ ने और कई साल पहले मुसलमानों के आक्रमण से पुजारी ने मुझे जमीन नीचे दबा दिया, तब से मुझे बहुत गर्मी लग रही है, अब तुम मेरा उद्धार करो, मुझे जमीन से निकालो और मैं पूरे संसार पर उद्धार करूंगा। इस तरह से भगवान जो है भक्त को श्रेय देते हैं। माधवेंद्रपुरी को श्रेय प्राप्त हुआ कि गोपाल जी का उन्होंने उद्धार किया और गोपाल जी पूरे संसार को उद्धार करते हैं। तो पहला सपना हुआ और दूसरा सपना, हाँ जब उनकी स्थापना हो गई गोवर्धन के ऊपर तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे ठंडे पानी के जितने भी अभिषेक हुए हैं उनसे मेरा ताप दूर नहीं हुआ, मेरा ताप दूर करने के लिए मलाई चंदन लाओ है ना। तो ये दूसरा सपना हुआ और तीसरा सपना हुआ तब जब चंदन लेकर के आ रहे थे तो रेमुणा मंदिर में जब हुए वो तो तीसरा सपना दिया। और तीसरा सपना जो गोपाल जी ने दिया तो क्या दिया, क्या बोले कि यहाँ लाने की जरूरत नहीं है चंदन, गोपीनाथ जी के शरीर में लगा दो तुम, मेरा ताप दूर हो जाएगा, गोपीनाथ जी के शरीर में और मेरे शरीर में कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह से तीन बार सपना दिया और माधवीपुरी के कारण किसी व्यक्ति पर भी कृपा हुई भगवान की, जैसे सपना मिला रेमुणा के पुजारी, गोपीनाथ जी के पुजारी को, तो वो पुजारी अपना को भाग्यशाली समझता है
वो माधव गुरु से कहता है कि तुम्हारे कारण मेरे ऊपर ऐसी कृपा हुई भगवान की, ऐसा सपना मुझे आज तक नहीं हुआ।
धन्यवाद। श्री श्री राधा पार साथी ललिता विशाखा की, श्री श्री गोणताय भगवान की।